स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है फरवरी की 19 तारीख और दिन मंगलवार। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना ने किया ऐलान, लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव लड़ेंगे साथ।
भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें लड़ेगी, शिवसेना 23 सीटें लड़ेगी। विधानसभा में हमारे जो कुछ अन्य दोस्त,
पुलवामा में मुठभेड़ खत्म, सेना के मेजर समेत 8 लोगों की मौत। चीनी कंपनी खावे के चेयरमैन की बीबीसी से खास बातचीत। बिहार से भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने थामा कांग्रेस का हाथ।
मेरे मन में काफी जहर भर दिया गया था, मैं उस चीज को समझ न सका। मेरे पिताजी एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनको खास करके खुद ही जवाहरलाल नेहरू जी ने चुना था।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की सेना से कहा है कि वह विपक्षी नेता खुआन गोइदो की ओर से दिए गए शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। फ्लोरिडा में एक रैली में भाषण देते हुए ट्रंप ने कहा कि अमरीका वेनेजुएला में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक चुनाव चाहता है, लेकिन सभी विकल्प भी खुले हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि यदि सेना मादुरो का समर्थन करना बंद नहीं करती है तो उसे छुपने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी और वो अपना सब कुछ गंवा देगी। वेनेजुएला की सेना को चेतावनी देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा,
यू कैन चूज टू एक्सेप्ट प्रेसिडेंट गुआइडोस जेनरस ऑफर ऑफ एमनेस्टी।
आप राष्ट्रपति गोइदो के दरिया दिल प्रस्ताव को स्वीकार करके शांति से अपने परिवार और अपने देशवासियों के साथ जीवन बिताने का विकल्प चुन सकते हैं। ना ही राष्ट्रपति गोइदो और ना ही हम तुम्हारे लिए बदले की कोई भावना रखते हैं, लेकिन तुम मादुरो के मानवीय मदद को रोकने के आदेश का पालन मत करो और ना ही प्रदर्शनकारियों, विपक्षी नेताओं, राष्ट्रीय संसद के सदस्यों या गोइदो के परिवार के खिलाफ किसी प्रकार की हिंसा की चेतावनी दो। विपक्षी नेता खुआन गोइदो बीते एक महीने से सेना से स्वतंत्र चुनावों का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया है। चीन की अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी कंपनी ख्वावे के संस्थापक ने कहा है कि उनकी कंपनी कभी भी चीनी सरकार के लिए जासूसी नहीं करेगी। रेन जेंगफे ने कहा है कि अमेरिका के लिए ख्वावे को अपने वश में करना नामुमकिन है और ना ही दुनिया इस कंपनी को छोड़ सकती है क्योंकि इसकी तकनीक बहुत विकसित है। ख्वावे का कहना है कि वो एक निजी कंपनी है, जबकि अमेरिका का मानना है कि कंपनी चीनी सरकार के बेहद करीब है और अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा है। कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी और रेन जेंगफे की बेटी मेंग वांझाओ इस समय कनाडा की हिरासत में है। उन्हें अमेरिका के कहने पर गिरफ्तार किया गया है। जेंगफे का कहना है कि उनकी बेटी की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। नाइजीरियाई राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी ने चेतावनी दी है कि यदि किसी ने आगामी चुनावों में दखल देने की कोशिश की तो उसकी हत्या तक भी हो सकती है। बुहारी ने कहा कि उन्होंने सेना और पुलिस को चुनाव में गड़बड़ी करने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, कोई भी जो बैलेट बक्सों को छीनने या बैलेट बांटने के लिए अपराधियों को लगाने का फैसला करेगा, ये उसका अंतिम गैर कानूनी काम होगा। मैंने पुलिस और सेना को आदेश दे दिया है, हम किसी आरोप को स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनकी टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति जंगल के न्याय का सीधा आदेश दे रहे हैं। पीडीपी और सत्ताधारी ऑल प्रोग्रेसिव पार्टी पर चुनावों में गड़बड़ी करने की योजना बनाने के आरोप लगे हैं। नाइजीरिया में बीते शनिवार को चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने अंतिम समय में चुनावों को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया। अब यहां शनिवार को मतदान होगा। ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो ने अपने सबसे वरिष्ठ सहयोगियों में से एक गुस्तावो बेबियानो को निलंबित कर दिया है। उन पर चुनाव अभियान के दौरान वित्तीय गड़बड़ी करने के आरोप हैं। गुस्तावो सत्ताधारी पीएसएल पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने किसी भी तरह की वित्तीय गड़बड़ी करने के आरोपों को खारिज किया है। बोल्सोनारो की सरकार को अभी 45 दिन ही हुए हैं और इस स्कैंडल ने उनकी सरकार के अंदरूनी लोगों को हिलाकर रख दिया है। और मिस्र के अधिकारियों के मुताबिक एक आत्मघाती हमलावर ने राजधानी काहिरा की ऐतिहासिक अल अजहर मस्जिद के पास धमाका किया है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है फरवरी की 19 तारीख और दिन है मंगलवार और इस वक्त हो चुके हैं भारत में 6:34:42। कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र से। आखिरकार अब ये तय हो गया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना एक साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिनमें से 25 सीटों पर बीजेपी और 23 सीटों पर शिवसेना अपने उम्मीदवार उतारेगी। कल रात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी घोषणा की। सुनिए बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।
अब तक लगभग हर रोज एक दूसरे पर छींटाकशी करती आई बीजेपी और शिवसेना पार्टी कल रात मुंबई में एक मंच पर साथ आ गई। कल दिन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के घर जाने के बाद ये अनुमान लगाया जाने लगा था कि दोनों के बीच गठबंधन का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। रात 8 बजे से थोड़ा पहले शुरू हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, पार्टी नेता मनोहर जोशी समेत कई नेता मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की और उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिवसेना के बीच कुछ मतभेद जरूर हों, लेकिन सैद्धांतिक रूप से दोनों की विचारधारा एक ही है और देश हित में राष्ट्रवादी दलों का साथ होकर आना जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि बीजेपी और शिवसेना न केवल लोकसभा बल्कि विधानसभा चुनाव भी साथ ही लड़ेंगे।
भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें लड़ेगी, शिवसेना 23 सीटें लड़ेगी। विधानसभा में हमारे जो कुछ अन्य दोस्त है उनसे बातचीत करके उनकी जो सीटें हैं उन सीटों को छोड़कर बची हुई सारी सीटें ये बीजेपी और शिवसेना ये इक्वल शेयर लेकर लड़ेगी और आधी आधी बांटकर लड़ेगी।
शिवसेना द्वारा उठाए गए राम मंदिर और किसानों के कर्ज के मुद्दे पर भी फडणवीस बोले। उन्होंने कहा कि बीजेपी मूल रूप से मानती है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर होना चाहिए। किसानों के मुद्दे पर भी फडणवीस ने बात की। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की कर्ज माफी नहीं हो पाई है उनको भी माफी दी जाएगी। फडणवीस के बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के मन एकदम साफ हैं और अब तक जो नाराजगी वाली स्थिति रही वो फिर से नहीं होगी।
अब जो कुछ हुआ हमारी बातचीत तो हुई है, दोबारा ऐसा अनुभव हम एक दूसरे को नहीं आने देंगे और आगे बढ़ेंगे तो साथ में हाथ में सिर्फ हाथ नहीं साफ मनाने दिल से आगे बढ़े।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में बोलने आए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि शिवसेना ने बीजेपी का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। शिवसेना और बीजेपी के बीच रही तनातनी पर भी अमित शाह बोले। उन्होंने कहा कि मन मुटाव इस मंच पर खत्म हो चुका है।
फिर से देश भर के दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना अगर कोई साथी है तो शिवसेना और अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का हर समय पर अच्छे बुरे हर समय पर साथ दिया है और मुझे आनंद है कि जो थोड़ा मनमुटाव बीच में हुआ था, हालांकि हम सरकार में साथ में ही थे दोनों सरकार, परंतु जो थोड़ा मनमुटाव था आज यहीं इसी टेबल पर इसी क्षण सारा मनमुटाव समाप्त कर दोनों पार्टियां एक साथ आगे बढ़ने का निर्णय किया है।
अमित शाह ने कहा कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन 45 सीटें जीतेगा। महाराष्ट्र में अब तक कांग्रेस और एनसीपी के बीच गठबंधन की सीटों पर बात बनती दिख रही थी, लेकिन अब बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन की सीटों पर बात तय हो जाने के बाद कांग्रेस एनसीपी खेमे में हलचल जरूर हुई होगी। मोहम्मद शाहिद, बीबीसी दिल्ली।
शिवसेना सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसती आई थी, लेकिन अब दोनों दल कह रहे हैं कि उनके बीच कोई खटास नहीं है। शिवसेना का कहना था कि वो राज्य में बड़ी पार्टी है, बड़ा भाई है और मुकाबला बराबरी का होगा, लेकिन अब बीजेपी और शिवसेना दोनों लगभग बराबरी की ही सीटों पर मान गए हैं। इसे किसको फ़ायदा या नुकसान हुआ है, यही सवाल पूछा हमारे साथी मोहम्मद शाहिद ने महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स से।
देखिए, इसमें दोनों ही जीते हैं और दोनों ही हारे हैं। उसके कारण मैं आपको बताता हूँ कि गए 3-4 साल से जब से शिवसेना गठबंधन में गई है तब से वो अपनी नाराजगी दिखा रही है, लेकिन शिवसेना को ये भी पता है कि मतलब अगर वो भाजपा से अपना नाता तोड़ लेती है चुनाव की रणनीति में तो उसका बहुत बड़ा नुकसान शिवसेना को भी उठाना पड़ेगा, तो वो एक बात है। और दूसरी बात ये है कि शिवसेना ने जो अपना जनाधार है, जो उसका जो जनाधार है खास करके मुंबई जैसे शहर में या मुंबई को लग के जो थाना है या जो कोकण इलाका है, कोस्टल रीजन है जो महाराष्ट्र का, उस इलाके में जो उसका खास करके जनाधार है उसको गए 2-3 साल से बीजेपी के खिलाफ तैयार किया है। अब वो बहुत ही मतलब ऐसे अचानक से कि हमारा अलायंस हो गया है और वो हिंदुत्व पर आधारित है या देश पर हमला हो रहा है या जो भी कारण देगी, वो जनादार इतनी जल्दी मानेगा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान शिवसेना को उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को तो सीधे सीधे नुकसान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 123 सीटें जीत के आई हुई पार्टी है 2014 में, तो उनको तो महज 21 सीटें ज्यादा मिल रही है गठबंधन में। तो जो स्थिति 2014 में थी, विधानसभा में हो या चाहे लोकसभा में हो, उस तरह की स्थिति तो आज नहीं है। आज तो मोदी की इतनी हवा देश में और महाराष्ट्र में नहीं है।
आप कह रहे हैं नुकसान की स्थिति है, लेकिन अभी तक विधानसभा की सीटों पे फाइनल नहीं हुआ है। साथ तो लड़ेंगे, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या लड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है कि क्या विधानसभा के चुनाव के वक्त भी दोनों के बीच में कुछ खींचतान बढ़ सकती है?
देखिए, ये जो अलायंस हुआ है, ये विधानसभा और लोकसभा दोनों का तय करके ही हुआ है। उसके बजाय उद्धव ठाकरे अलायंस को कभी हाँ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उद्धव ठाकरे के स्टेक्स ये लोकसभा में लगे ही हुए नहीं है। समझिए, उद्धव ठाकरे को 23 सीटें मिल गई है, 23 में से अगर वो 20 सीटें जीतता है, और समझिए कि 2019 में मोदी सरकार वापस बना लेता है, तो कोई उद्धव ठाकरे को कोई प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं ऑफर करने वाला है। उद्धव ठाकरे के स्टेक्स लगे हुए हैं, वो महाराष्ट्र में लगे हुए हैं। तो उद्धव ठाकरे की जो बातचीत हुई अमित शाह से हो, चाहे नरेंद्र मोदी से हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस से हो, वो बातचीत तो महाराष्ट्र को लेकर ही हुई है।
तो इन्होंने अभी तक सीटों को क्यों नहीं खोला है कि बीजेपी
नहीं खोलेंगे? क्योंकि वो अगर सीटें खोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उसका हड़कंप मच सकता है ना।
अगर रुख करें एनसीपी कांग्रेस के बीच का, तो उनका अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या सीटें कितनी सीटों पर लड़ेंगे। अगर वो भी तय हो जाता है तो फाइट तो नेक टू नेक रहेगी।
एनसीपी और कांग्रेस की सीटों का तो ऑलमोस्ट तय है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तय नहीं हो पाया है वो एनसीपी कांग्रेस बाकी छोटे पार्टनर्स को कैसे अकोमोडेट करेगी। उसमें भी प्रकाश अंबेडकर का जो मतलब एक जो उन्होंने जो एक फ्रंट बनाया है, उसको कितनी सीटें छूटेगी और क्या प्रकाश अंबेडकर कांग्रेस एनसीपी के साथ आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस एनसीपी का तो 100% तय है, तो जो फाइट होने वाली है वो तो मतलब वो तो कड़ी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो मेट्रोज है, जैसे बंबई है या थाना है या पुना सिटी है या नासिक है, ऐसे मेट्रोज में भाजपा और सेना का थोड़ा बोलबाला रहेगा, लेकिन जो ग्रामीण इलाके है, जो पिछले एरिया है महाराष्ट्र का, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और एनसीपी का वर्चस्व रहेगा इस चुनाव।
मुंबई से ये थे वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स। और अब बात जम्मू कश्मीर की। भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा जिले में सेना और चरमपंथियों के बीच सोमवार तड़के से शुरू हुई मुठभेड़ अब खत्म हो गई है। इसमें 5 सुरक्षाकर्मी और 3 चरमपंथियों की मौत हो गई है। मारे गए सुरक्षाकर्मियों में एक मेजर शामिल हैं। सेना के एक ब्रिगेडियर और जम्मू कश्मीर पुलिस के DIG के अलावा कई और सैनिक घायल हुए हैं। सुनिए श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
पुलवामा के लखपोरा में हुए आत्मघाती हमले के महज 3 दिन बाद पुलवामा के ही एक दूसरे इलाके पिंगलन में सोमवार तड़के सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जो करीब 18 घंटों तक जारी रही। इस मुठभेड़ में सेना के एक मेजर समेत 4 सैनिक और पुलिस का एक जवान भी मारा गया है। पुलिस ने दावा किया है कि मुठभेड़ में 3 चरमपंथी भी मारे गए हैं। गोलाबारी के तबादले में एक आम नागरिक भी मारा गया है। पुलिस ने कहा है कि इलाके में तलाशी अभियान के दौरान इलाके में छुपे चरमपंथियों ने सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी गोली चलाई। पुलिस और सेना के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मुठभेड़ में मारे गए 3 चरमपंथियों में से एक चरमपंथी की पहचान कामरान के तौर पर हुई है। कामरान को 14 फरवरी को हुए आत्मघाती हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस और सेना के सूत्रों ने बताया है कि वकार जैश चीफ मौलाना मसूद अजहर का करीबी था, जो घाटी में जैश का चीफ कमांडर था। मारे गए एक और चरमपंथी की पहचान हिलाल अहमद के रूप में हुई है। मारे गए 3 चरमपंथियों का संबंध जैश मोहम्मद चरमपंथी संगठन से बताया गया है। इस मुठभेड़ में सेना के एक ब्रिगेडियर और पुलिस के DIG समेत 9 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। पुलवामा के एक स्थानीय मीडिया कर्मी शबनम फयाज, जो कि मुठभेड़ स्थल पर कई घंटों तक मौजूद थे, ने बताया।
देखिए, अगर माहौल की बात करें तो बेहद उसको कहते हैं कशीदा माहौल, पुरतनाव माहौल था इलाके में। खौफ फिराज की लहर दौड़ चुकी थी, क्योंकि गुजस्त रात से ही ये सिलसिला शुरू हुआ था। पहले 12 बजे के करीब इस इलाके को घेरे में लिया गया था।
पिंगलन मुठभेड़ से 3 दिन पहले पुलवामा लखपोरा में CRPF की एक कानवाई पर आत्मघाती हमला किया गया था, जिस हमले में CRPF के कम से कम 40 जवान मारे गए। اس آتمگاتی حملے کو ایک ستھانیہ چرمپنتھی 21 سال کے عادل احمد ڈار نے انجام دیا تھا۔ جیش محمد نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ پلوامہ حملے کے بعد بھارت میں پاکستان ورودھی پردرشنوں اور جموں میں کشمیریوں کے ورودھ پردرشنوں کے بعد جموں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ بھارت کے دوسرے شہروں میں کشمیری چھاتروں اور بیوپاریوں کو پریشان کرنے اور دھمکانے کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ پلوامہ حملے کے بعد بھارت اور پاکستان کے رشتوں میں ایک بار پھر کھٹاس پیدا ہو گئی ہے۔ بیتے سال سرکشا بلوں نے کشمیر گھاٹی میں 250 چرمپنتھیوں کو مارنے کا دعویٰ کیا تھا۔ بیتے 2 برسوں سے کشمیر گھاٹی میں چرمپنتھیوں کے خلاف ابھیانوں میں سرکشا بلوں نے کئی بڑی کامیابیوں کا دعویٰ کیا تھا، لیکن پلوامہ حملے کے بعد استھتی گمبھیر ہو گئی ہے۔ ماجد جہانگیر، بی بی سی، سری نگر۔
اور اب ایک انتراشٹریہ خبر۔ چینی کمپنی خاوے کے چیئرمین رین زنگفائی نے بی بی سی سے خاص بات چیت میں کہا ہے کہ امریکہ ان کی کمپنی کے وستار کو کسی بھی قیمت پر نہیں روک سکتا ہے۔ اپنی بیٹی اور کمپنی کے پرمکھ وتی ادھیکاری کی گرفتاری کو راجنیتی سے پریرت قرار دیا۔ ان سے بات چیت کی بی بی سی سنواداتا کرشما واسوانی نے، لیکن یہ رپورٹ سنیے دل نواز پاشا سے۔
دنیا کی سب سے بڑی تکنیکی کمپنیوں میں شامل خواوے کے سنستھاپک رین زینگفے نے بی بی سی سے کہا ہے کہ ان کی کمپنی کبھی بھی چین کے لیے جاسوسی نہیں کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے لیے ان کی کمپنی کو اپنے وش میں کرنا ناممکن ہے اور نہ ہی دنیا ان کی کمپنی کے بنا رہ پائے گی۔ انہوں نے کہا، ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ امریکہ ہمیں دبا دے۔ دنیا کو خواوے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم ادھک وکست ہیں۔ اگر وہ دوسرے دیشوں کو بھی کچھ سمے کے لیے ہمارے اتپاد نہ استعمال کرنے کے لیے منا لیتے ہیں تو ہم اپنے ویاپار کو تھوڑا کم کر لیں گے، اور کیونکہ امریکہ ہم پر نشانہ سادھتا رہا ہے اور کمیاں ڈھونڈتا رہا ہے، اس سے ہمیں اپنے اتپادوں اور سیواؤں کو سدھارنے میں ہی مدد ملی ہے۔ خواوے اپنے آپ کو ایک نجی کمپنی بتاتی رہی ہے، لیکن امریکی خفیہ ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ یہ کمپنی چینی سرکار کے بے حد قریب ہے اور اس کے لیے اپنے اپکرنوں سے جاسوسی بھی کرتی ہے۔ رین زینگفے کا کہنا ہے کہ یدی امریکہ پشچمی دیشوں کو ان کے اپکرن بند کرنے کے لیے منع بھی لیتا ہے تو ان کی کمپنی کی صحت پر بہت اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا، اگر پشچم میں ہمارے لیے بتیاں بجھیں گی تو پورب میں روشن ہوں گی، اور اگر اتر میں اندھیرا ہو گیا تو بھی ہمارے لیے دکشن بچا رہے گا۔ امریکہ پوری دنیا کا پرتنیدھتو نہیں کرتا ہے۔ رین زینگفے کی بیٹی اور کمپنی کی مکھیا وتی ادھیکاری مینگ وانجھاؤ اس سمے امریکہ کی مانگ پر کناڈا کی حراست میں ہیں۔ جب ان سے ان کی گرفتاری کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، جو امریکہ نے کیا ہے میں اس کا ورودھ کرتا ہوں، یہ راجنیتی سے پریرت ہے اور اسویکاریہ ہے۔ جب بھی کوئی وواد ہوتا ہے تو امریکہ دوسروں پر پرتیبندھ لگانا پسند کرتا ہے، وہ ایسے طریقے اپناتے رہیں گے، ہم اس کا ورودھ کرتے ہیں۔ امریکہ اور چین کے بیچ اس سمے گمبھیر ویاپار یدھ چل رہا ہے جس کا اثر دونوں ہی دیشوں کی ارتھ ویوستھاؤں پر بھی پڑ رہا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ خواوے پر کارروائی بھی اسی کے تحت کی جا رہی ہے۔
رپورٹ سنا رہے تھے دل نواز پاشا۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان 2 دیوسیہ دورے پر آج بھارت آ رہے ہیں۔ محمد بن سلمان اس سے پہلے پاکستان گئے تھے اور وہ پاکستان سے سیدھے بھارت آ رہے ہیں۔ کراؤن پرنس کا دورہ ایسے سمے میں ہو رہا ہے جب بھارت پرشاست کشمیر کے پلوامہ میں ہوئے چرمپنتھی حملے کے کارن بھارت پاکستان کے رشتوں میں بہت زیادہ تناؤ ہے۔ ہماری سہیوگی گرپریت سینی نے ودیشی معاملوں کے جانکار قمر آغا سے بات چیت کی اور سب سے پہلے پوچھا کہ سعودی عرب کے لیے بھارت اور پاکستان دونوں سے رشتہ بنائے رکھنا کتنا مشکل ہے۔
دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز سسٹمز میں فرق ہے۔ ہم لوگ ڈیموکریسی، رول آف لا پہ وشواس رکھتے ہیں، ان کے یہاں اسلامک رجیم ہے اور بہت ہی کٹر پنتھی رجیم ہے، اور وہ رجیم جو ہے وہ کٹر پنتھی طاقتوں کو پروموٹ بھی کرتی ہے۔ وہ پرابلم ہم لوگ کے ساتھ بھی ہے اور تمام ڈیموکریٹک نیشنز جو بھی ہیں۔ ویسے ہمارے ان کے سمبندھ بہت اچھے ہیں، اکنامک ریلیشنز ہیں اور ٹریڈ ٹائز ہماری لگاتار بڑھتی جا رہی ہے ان کے ساتھ۔ ایک اور اریٹیشن ہے دونوں کے، ریٹنٹ ہے دونوں کے بیچ میں، سعودی عربیہ جو ہے اور گلف کے دوسرے دیش جو ہیں، وہ جو کشمیر کو لے کے پاکستان کا ریزولوشن ہوتا ہے اسلامک کانفرنس آرگنائزیشن میں، اس میں ہمیشہ وہ لوگ اس کو سمرتھن کرتے ہیں، وہ ایک ریٹینٹ بنا ہوا ہے پاکستان کے لیے۔ تیسری چیز یہ ہے، ہمارا ان کا ڈفرینس طالبان کو بھی لے کے ہے، सऊदी अरेबिया और यूएई अकेले दो कंट्रीज थे जिन्होंने पाकिस्तान के अलावा तालिबान को रिकॉग्नाइज भी किया था, जब उनकी सरकार बनी थी वहां पे सत्ता में आए थे और उनको मदद भी की थी और अभी भी उनके संबंध बने हुए हैं इनसे। भारत का मानना यह है कि वो एक आतंकवादी संगठन है।
सऊदी पर चरमपंथ को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं, वो पाकिस्तान को काफी आर्थिक मदद भी दे रहा है, भारत को क्या इससे सावधान रहने की जरूरत है?
सऊदी अरेबिया जो है वो कट्टरपंथी जो ताकतें हैं उनको जो सपोर्ट करता है, खासतौर से उस तरह के जो मदरसों को और रूढ़िवादी शक्तियों को या आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। भारत के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय है, 14% के करीब है, इसकी संख्या बहुत बड़ी है, तो उसका भय रहता है हमेशा कि कहीं अगर एक्सट्रीमिज्म भारत में आई, अभी तक तो आई नहीं है, आई तो जरूर है लेकिन कम रही है, बहुत ज्यादा लोगों उससे प्रभावित नहीं हुए हैं। ISS वगैरह जैसी संस्थाओं में भी बहुत ज्यादा लड़कों ने भारत के नहीं ज्वाइन किया, लेकिन ये टेंडेंसी यहाँ मौजूद है। डर ये रहता है कि ये अगर एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज बढ़ती हैं, उस तरह के मदरसे यहाँ खुलते हैं और जिनको रोका नहीं जा सकता डेमोक्रेसी में और फंडिंग उनको मिलती है बड़ी, तो वो एक समस्या बन जाती है भारत की, तो ये भी एक मुद्दा रहता है।
ईरान और सऊदी अरब के बीच काफी तनाव रहता है, भारत की ईरान से अच्छी दोस्ती है, भारत सऊदी से भी दोस्ती का दावा करता है, ऐसे में क्या भारत के लिए कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है?
नहीं, देखिए हम अपने नेशनल जो हित है हमारे देश के उन हित में काम करते हैं और हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जिसे कहते हैं उसको हम मेंटेन करते हैं। हमारे अच्छे संबंध सऊदी अरेबिया से भी हैं, ईरान से भी हैं और इजराइल से भी हैं, ये तीनों इम्पोर्टेंट देश हैं अरब कंट्रीज के इस पूरे रीजन में। ईरान हमारे लिए गेटवे है सेंट्रल एशिया का, हमारे सिविलाइजेशनल टाइज हैं यानी सांस्कृतिक टाइज हैं, आज की नहीं हजारों साल पुरानी है इस्लाम आने से पहले से। इसी तरह के अरब से भी है हमारे ट्रेड टाइज बहुत पुराने और हम उनको मेंटेन करते हैं। दूसरी हमारी जो ये सभी देश जो हम लोगों से डील करते हैं वो उसका एक बड़ा कारण ये है कि भारत जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में तो काम करता है मगर इनके जो इंटरनल मामले होते हैं उनमें भारत बिल्कुल नहीं बोलता। अरबों की जो जेन्यून डिमांड है, जो जस्ट डिमांड है जैसे फिलिस्तीन की है, उसको तो सपोर्ट करता है मगर इनके इंटरनल जितने भी झगड़े होते हैं या कोई डिस्प्यूट है तो उसमें वो भारत बिल्कुल न्यूट्रल रहता है और कोई उसमें दखल नहीं देता। और यही नहीं बल्कि इनके यहाँ के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भारत पूरा खुल के सहयोग देता है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा। और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो चुका है, दिलनवाज अखबारों के साथ मौजूद हैं, बताइए दिलनवाज
जी, कल पुलवामा के पास जो एनकाउंटर हुआ उसी से जुड़ी खबरें आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। अब भारत लिखता है 100 घंटे में मास्टरमाइंड ढेर लेकिन मेजर समेत 5 शहीद, तो वहीं इसी पर दैनिक भास्कर का शीर्षक है कामरान तमाम, कामरान अफगानिस्तान में 28 देशों की सेना से 3 साल बचता रहा, हमारी सेना ने किया ढेर। तो ये कामरान को अहम साजिशकर्ता बताया जा रहा है पुलवामा में हुए CRPF काफिले पर हमले का, और अखबारों ने बताया है कि किस तरीके से एक बड़े ऑपरेशन में कल उनको भारतीय सेना ने मार दिया। अखबारों ने तस्वीर भी प्रकाशित की है उस घर की जिसमें ये छिपे थे और रॉकेट लॉन्चर से उस घर को उड़ाया गया, तो आग लगती हुई तस्वीर, घर में धुआं उठता हुआ, ये कई अखबारों में जी सभी अखबारों के पहले पन्ने पर एक ही जैसी तस्वीर है। इसी से जुड़ी एक खबर है इंडियन एक्सप्रेस में जिसमें चर्चा रही थी देहरादून में कश्मीरी छात्राओं के साथ बदसलूकी की। अब अखबार अपनी एक रिपोर्ट में बताता है चूंकि भीड़ ने जिद की तो एक कॉलेज के डीन को सस्पेंड कर दिया गया, भीड़ चाहती थी कि कॉलेज के डीन को सस्पेंड कर दिया जाए, तो ये खबर अखबार में है। भारत और पाकिस्तान से जुड़ी एक और खबर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग स्थित, वहाँ कुलभूषण जाधव जो भारत के कथित जासूस हैं जैसा पाकिस्तान कहता है, उनका मामला की सुनवाई चल रही है। वहाँ पहले दिन में भारत ने अपने तर्क रखे और अदालत से कहा कि सज़ा को रद्द किया जाए, कुलभूषण जाधव को मौत की सज़ा दी गई है। एक तस्वीर है कई अखबारों में पहले पन्ने पर प्रकाशित हुई है, इसमें पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर भारत के दीपक मित्तल की ओर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हाथ बढ़ा रहे हैं और मित्तल उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, तो ये तस्वीर के अखबारों के पहले पन्ने।
सऊदी क्राउन प्रिंस आज भारत आ रहे हैं उनके
जी, इससे जुड़ी खबरें पहले पन्ने पर तो नहीं दिख रही हैं। एक दिलचस्प खबर है अमर उजाला में एंकर छपी है, उत्तर प्रदेश का मामला है, 2 माह से चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखने पर फूट फूट कर रोए विधायक।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा आपका। 3 साल पहले बीजेपी से निलंबित किए गए सांसद कीर्ति आजाद कल राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। कीर्ति ने इसे घर वापसी करार दिया है। कीर्ति ने डीडीसीए में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और उसमें तत्कालीन डीडीसीए अध्यक्ष अरुण जेटली की भूमिका को संदिग्ध बताया था। वो पिछले करीब 30 सालों से बीजेपी में थे और बिहार के दरभंगा से 3 बार सांसद रह चुके हैं। उनके पिता भागवत झा आज़ाद बिहार के एक बड़े कांग्रेसी नेता और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद ने कीर्ति आज़ाद से बात की और पूछा कि आखिर वो कांग्रेस में क्यों शामिल हुए।
पहली वजह है कि इन लोगों ने मेरे पीठ में छुरा भोंका। मैंने ईमानदारी के साथ काम किया, मैंने आशा की थी यह लोग अपने बात पर अड़ी रहेंगे। इन्होंने शुरू में ही चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इन्होंने कहा था मैं काला धन लेकर आऊंगा, 100 दिनों के अंदर सरकार बनने के बाद मैं 15-15 लाख सबके अकाउंट में डालूंगा, मैं 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, मैं पेट्रोल डीजल के दाम कम करूंगा, मैं महिलाओं को सुरक्षा दूंगा और इत्यादि इत्यादि। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी मार तो मेरे साथ हुई जब मैंने सुना न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ क्योंकि पिछले 15 से 20 सालों से डीडीसीए में हुए 400 करोड़ के घोटाले का मैंने उजागर किया था और उसकी बात मैं लगातार करता रहा था। एक निजी संस्था थी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष थे श्री अरुण जेटली जी, और श्री अरुण जेटली जी के समय में 400 करोड़ का घोटाला हुआ। मेरे पास दस्तावेज है सरकार, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने उसके पर इन्वेस्टिगेशन की थी और पाया था कि 400 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है। मैंने इतनी आवाज उठाई थी।
बीजेपी ने आपको पार्टी से निकाल दिया, लेकिन आप खुद कोर्ट जा सकते थे, वहां अपनी बात रख सकते थे, तो आपने दूसरा रास्ता क्यों नहीं चुना?
कोर्ट एक अलग चीज है, पार्टी एक अलग चीज है। मैं मर्यादा में रह के सोचता रहा कि शायद आज होगा, कल होगा, कोई ना कोई बात होगी, कुछ हो गया होगा, लेकिन मैंने देखा कि नहीं हुआ। लेकिन कोर्ट में भी हम जाएंगे, कोर्ट के दस्तावेज भी तैयार है, चुनाव पास आ चुके हैं, इसलिए चुनाव के बाद ही इसके ऊपर कार्रवाई
लेकिन करेंगे। कांग्रेस में ही शामिल होने का क्यों? क्योंकि आप जब तक बीजेपी में थे तो कांग्रेस के विरोधी थे, आपके फादर लेकिन कांग्रेस से रहे थे, लेकिन अब क्या कांग्रेस में आपको अच्छाई दिख गई जो आप कांग्रेस में चले गए?
जी हाँ, मेरे मन में काफी जहर भर दिया गया था, मैं उस चीज को समझ ना सका। मेरे पिताजी एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनको खास करके खुद ही जवाहरलाल नेहरू जी ने चुना था और 1952 में वह सबसे कम उम्र वाले संसद सदस्य बने थे। इंदिरा जी के समय में वह उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे, राजीव जी ने उन्हें मुख्यमंत्री, उनके काल में मुख्यमंत्री थे बिहार के, वो उन्होंने बड़ी सेवा की थी। मैंने एक चीज जानी और समझी कि बीजेपी के इस मुखौटे के पीछे एक बहुत डरावना सा चेहरा है। यह जो कहते हैं वो करते नहीं है, यह वो अटल जी और अडवाणी जी वाली बीजेपी नहीं रह गई जहां 24 घंटे के अंदर समस्याओं का समाधान होता था। आजकल तो नेहरू जी को गालियां दी जा रही हैं, जो बेचारे मर गए।
ठीक है, नेहरू जी की आपने बात की, नेहरू जी की बात की और इंदिरा जी के समय की बात की, लेकिन अभी ये बताइए कि राहुल जी में आपको क्या बेहतर दिख गया?
राहुल जी एक नौजवान ऊर्जावान व्यक्ति है। पिछले कुछ महीनों से, विशेषकर पिछले एक साल से, जिस प्रकार के वह प्रश्न, जटिल प्रश्न उठा रहे हैं, उसका जवाब माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास भी नहीं है।
कांग्रेस के साथ आप क्या, अपना क्या भविष्य देख रहे हैं? क्या वापस आप दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे? आपको उम्मीदवार बनाएगी कांग्रेस?
मेरा मन तो है कि मैं दरभंगा से पुनः चुनाव लड़ूं। मेरे से पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दरभंगा से चुनाव नहीं जीता था 1952 से लेकर 1998 तक। मैंने 3-3 बार वो सीट जीती, जबकि केवल एक फातमी जी को छोड़कर दूसरा कोई व्यक्ति 52 से लेके आज तक 2 बार नहीं जीता था। मुझे 3-3 बार लोगों ने वहां का आशीर्वाद दिया। अब यह पार्टी पे तय है कि वो कहां से मुझे लड़ाती है, मेरा क्या भविष्य तय करती
है। तो क्या कीर्ति आजाद बिहार में कांग्रेस का चेहरा भी बनना पसंद करेंगे?
पार्टी जो तय करेगी मैं वो करूंगा, पार्टी का प्रचार करूंगा। यह देश की सबसे पुरानी पार्टी है जिसने भारत को आजादी दिलाई थी।
ये थे कीर्ति आजाद। और अब एक बार फिर वक्त हो गया है प्रमुख समाचारों का।
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ाने के लिए की कोशिश करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की सेना से कहा है कि वह विपक्षी नेता खुआन गोइदो की ओर से दिए गए शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। चीन की अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी कंपनी ह्वावे के संस्थापक ने कहा है कि उनकी कंपनी कभी भी चीन सरकार के लिए जासूसी नहीं करेगी। रेंग जेंगफे ने बीबीसी से खास बातचीत में कहा कि अमरीका के लिए ह्वावे को अपने वश में करना नामुमकिन है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी ने चेतावनी दी है कि यदि किसी ने आगामी चुनावों में दखल देने की कोशिश की तो उसकी हत्या तक हो सकती है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली अजीत सारथी ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।